राम ने कहा कि ठीक है, ये छड़ी लीजिए और देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है। इस छड़ी को बहुत दूर फेंकिए और जितनी दूर आप फेंकेंगे उतनी जमीन हम आपको दे देंगे, और जितने गाय उस भूमि में आ जाएंगे उतने गाय भी आपको दे देंगे। तो ब्राह्मण ने सोचा, अच्छा ब्राह्मणों के ऊपर संशय कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने धोती अपने ऊपर कर ली और फिर छड़ी हाथ में ली, ऐसे घुमाए कई बार और बड़े दूर छड़ी को फेंक दी। तो श्री राम हसमुख चेहरे से देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, देखो ब्राह्मणों की ताकत कितनी होती है, दिखने में बड़े दुबले पतले हैं लेकिन ये ब्रह्म तेज कैसा होता है। तो उनको जितना चाहा वो उनको दान दे दिया। तो ऐसे बड़ा प्रेम का संबंध श्री राम का था ब्राह्मणों के प्रति, प्रजा के प्रति भी था। उत्तरकांड में एक कथा आती है कि ऐसे नियम था राम राज्य में कि कोई भी प्रजा के सदस्य यदि असंतुष्ट होते तो उनको पूरा अधिकार रहता था कि वो सीधे श्री राम के दरबार में प्रवेश करे और अपनी शिकायत को वहां पेश करे। आजकल तो ये संभव ही नहीं है। तो यहां एक उनके दरबार के बाहर एक घंटी हुआ करती थी। जब घंटी बजती थी तो पता चलता था कि कोई असंतुष्ट व्यक्ति खड़ा है, वो दरबार में आना चाहता है, तो बुला लेते थे श्री राम उनको। एक बार एक कुत्ता घंटी बजा रहा था। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पशु वो भी प्रजा होते हैं, प्रकृष्ट रूपेण जायते, जिनका जन्म उस प्रांत में होता है वो प्रजा होते हैं। तो प्रजा का मतलब केवल मनुष्य नहीं, जिन्होंने जिन प्राणियों ने जन्म लिया है उस राज्य में वो उस राज्य के प्रजा हो जाते हैं। तो कुत्ता भी प्रजा है। तो उन्होंने बुलवाया कि भाई कुत्ते को, लक्ष्मण बुलाओ, देखो भाई क्या चाहे, कुत्ता आ गया है, क्या समस्या है। तो ये और एक कहानी है, खैर इसमें नहीं जाएंगे हम, और दूसरे समय कभी कहानी सुनाएंगे। इतना कहना काफी है, ये कुत्ता ठीक है, बोल ही डालते हैं संक्षेप में, नहीं तो आप सोचेंगे क्या है, बस इतना सुना के वो आगे चले गए। तो कुत्ते ने कहा कि भाई एक ब्राह्मण है जो हमको बहुत पीट रहे हैं। अच्छा ब्राह्मण पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं? खैर ऐसे ऐसे कोई मतभेद हुआ, कोई समस्या हुई, तो ठीक है, पर उस ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए? आप उसे मठाधीश बना दीजिए किसी वहां उस मठ का। कहे भाई, श्री राम ने पूछा ये कैसे, ये किस तरह का दंड हुआ? तो कुत्ता कहने लगा कि प्रभु ऐसा है कि मैं पिछले जन्म में कलंजर मठ का मठाधीश था। जब व्यक्ति मठाधीश बनता है ना, वो तो उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, अपराध हो जाते हैं, और देखो ये मेरी दशा हुई। तो अब इस ब्राह्मण को मैं यदि उसको दंड मिलना चाहिए तो ऐसा ही कुछ उसे दंड दीजिए। तो खैर कहने का मतलब है कि श्री राम सबके प्रति समभाव रखते थे, कुत्ता हो, कोई पंछी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, न्याय हर एक व्यक्ति हर एक पशु राम के दरबार में पा सकता था। फिर आगे बताते हैं, शुचि ही अपने व्यवहार में शुद्ध रहा करते थे। ना श्रेयसी रतो, ऐसे कोई कार्य करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे जो कि हित के लिए न हो, अपने हित के लिए और अन्यों के हित के लिए। तो कोई भी कार्य करने के पहले हमें सोचना चाहिए, ये कार्य मेरे हित के लिए है क्या, सच्चे हित के लिए, आध्यात्मिक हित के लिए, क्या ये कार्य मेरे आध्यात्मिक हित के लिए है क्या, और ये कार्य अन्यों के हित के लिए भी है क्या? यदि नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, यदि सबके हित के लिए है तो कर लेना चाहिए। न विरुद्ध कथा रुचि ही, धर्म के विरुद्ध जितने भी कथाएं होती थी प्रजल्प इत्यादि, उनमें बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे श्री राम। तो हमें भी ऐसे ही उसूल हमारे जीवन में अपना लेना चाहिए। जब कोई आके तरह तरह की बातें हमसे करे, अन्यों का भला बुरा करे, ये भक्त ने ऐसे किया, वो भक्त ने ऐसे किया, ये भक्त ऐसे है, वो भक्त वैसे हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। तो ऐसे श्री राम के गुण बताए जाते हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो तरुण थे और निरोगी थे। हाँ, आजकल देखा जा रहा है कि भक्तों में रोग बहुत होते हैं, तरुण ब्रह्मचारी के अंदर भी सब जगह तरह तरह के रोग। जब ट्रकों की बात चल रही है तो एक जगह ट्रक के पीछे में ये भी देखा था, करो योग रहो निरोग। हमने बोला चलो अच्छी बात है, तो हमने भी योगा करना शुरू कर दिया भाई, चलो कुछ स्वास्थ्य के लिए ठीक हो जाके अच्छी तरह से जप कर सकें, कथा भी सुन सकें। तो हम भी यदि हठ योग आदि करते हैं तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए नहीं करते, हमारे लिए भक्ति योग ही पर्याप्त है। परंतु हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ताकि हम भगवान की सेवा और हमारी साधना अच्छी तरह से कर सकें, इसलिए हम करते हैं। वाग्मी अर्थात बड़े वाक्पटु थे श्री रामचंद्र। ऐसे और भी कई लक्षण बताते हैं और ये भी कहते हैं वाल्मीकि जी, विचक्षण है, वो अच्छी तरह से जानते थे कि किस व्यक्ति को दंड देना चाहिए और किस व्यक्ति के ऊपर कृपा करनी चाहिए, ये भेद कर सकते थे, उनके अंदर ये विवेक बुद्धि थी। वैसे देखा जाए तो भगवान जब दंड भी देते हैं किसी को तो वो कृपा ही है। देखिए, दंड और कृपा इनमें अंतर क्या है, ये निर्भर करता है कि यह दंड देने वाले व्यक्ति का हृदय कैसे है, उसके अंदर भावना कैसी है। यदि दंड देने वाले के हृदय में भावना प्रेम की है, और जब दंड दे रहा है तो उसकी भावना यह है कि सामने वाले का हित होना चाहिए, तो फिर वो दंड दंड नहीं, वो हमारे हित के लिए कार्य है। यदि दंड देते समय हमारे हृदय में ईर्ष्या है, अहंकार है, द्वेष है, घृणा है, और हम दूसरे व्यक्ति का अहित चाहते हैं, उसकी बुराई चाहते हैं, तो वो दंड ठीक नहीं है, वो अन्याय है, वो अत्याचार है। तो दंड देना ये भी ज्ञान के स्तर पर स्थित होना चाहिए और प्रेम के स्तर पर स्थित होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दंड देती है तो प्रेम से देती है, प्रेम है हृदय में इसलिए देती है, और बच्चे का हित हो इसलिए देती है। तो राजा को भी चाहिए कि जब वो किसी ऐसे प्रजा के सदस्य को दंड दे जो गुनहगार हो, तो राजा के मन में भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि मेरा ही बच्चा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको दंड देकर मैं इसे धर्म के रास्ते पे पुनः लेकर आऊं। यदि मैं दंड नहीं दूंगा इसे तो फिर ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे कर्तव्य करने में मैं असफल रह जाऊंगा, मैं भी दंडित हो जाऊंगा भगवान के दरबार में, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ये सब मेरे आश्रित हैं, ये प्रजा, तो आश्रितों की रक्षा करना और ये देखना कि ये सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो राजा जो प्रामाणिक राजा होते हैं, सही राजा, नारदेव जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो इस भावना से दंड देते हैं। तो श्री राम तो हैं नारदेव नहीं, वो तो स्वयं देव हैं, भगवान हैं, अब नरलीला कर रहे हैं, तो वो भी भली भांति जानते थे किसको दंड देना है, किसके ऊपर कृपा करनी है, और उनका दंड भी कृपा ही हुआ करता था। परंतु केवल इतना अंतर है कि कृपा का जो स्वरूप है या रूप है वो बदल जाता था। अब कल दो तीन भक्तों ने हमसे निवेदन किया, एक प्रश्न पूछा था कि श्री रामचंद्र ने वाली का वध जब किया, वाली की हत्या जब की, तो ये एक ऐसा विषय है जो लोगों को भ्रमित करता है, वाद का विषय है, और जो लोग भक्त नहीं हैं वो ऐसे भगवान की निंदा करते हैं कि श्री राम ने वाली का वध क्यों किया, ये अन्याय था। श्री राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उन्होंने अन्याय का साथ क्यों दिया, तो ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे, तो चलिए इस विषय की चर्चा अब करें, क्योंकि यहाँ पे विषय ये चल रहा है कि श्री राम ये जानते थे कि किसको दंड देना है और किसको नहीं देना है और किस रूप में दंड देना है। तो इसके पहले कि हम निर्धारित करें कि श्री राम ने जो किया था वो सही था या गलत था, वैसे तो राम तो गलत नहीं कर सकते, फिर भी जानकारी के लिए हमें इतिहास जान लेना चाहिए। जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे तो जैसे कि हमने पहले बताया, हनुमान जी उनके सामने आए। हनुमान जी सुग्रीव के साथ में रहा करते थे। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के निकट और उसके अंदर रहा करते थे, क्योंकि ऐसे एक श्राप मतंग ऋषि ने सुग्रीव के भाई वाली को दिया था कि यदि तुम मेरे आश्रम या आश्रम के 4 मील आसपास इस इलाके में आओगे तो तुम मर जाओगे। तो इसलिए वाली वहां नहीं आया करता था, और वाली और सुग्रीव के बीच में वैर था, दुश्मनी थी। कारण क्या था? श्री राम ने सुग्रीव से जब पूछा, हनुमान जब अच्छी खबर लेकर आए सुग्रीव को, सुग्रीव ने भेजा था हनुमान जी को, अरे ये दो लोग आ रहे हैं, ऋषियों का वेश धारण किया हुआ है, लेकिन इनके शरीर से दिखाई पड़ता है कि ये लोग क्षत्रिय हैं, बहुत बलवान दिख रहे हैं, कहीं ये तो कोई वाली की चाल नहीं, हनुमान जाकर जरा देख लो। तो हनुमान जी चले आए, वो भी एक ब्राह्मण का वेश लेकर धारण करके आए, बड़े अपने मधुर भाषा में बात करते करते श्री राम को उन्होंने बहुत प्रसन्न कर दिया, सीधे अपना परिचय दे दिया कि मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का सेवक हूं। सुग्रीव रहा ऋषिमुख पर्वत पर हैं, और सुग्रीव की दशा उन्होंने बताई। राम ने अपनी दशा बताई कि मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण हो चुका है, मैं सीता देवी को ढूंढ रहा हूं। तो हनुमान जी ने वापस खुशखबरी जाकर दे दी सुग्रीव को कि ये राम और लक्ष्मण हैं, आप इनके साथ दोस्ती का समझौता कर लीजिए। तो जब सुग्रीव भी उनके पास आए तो एक समझौता हुआ दोनों के बीच में। परंतु इसके पहले सुग्रीव को श्री राम ने बताया उनकी दशा। सुग्रीव ने कहा, रावण का नाम तो मैंने सुना नहीं है, फिर भी जो भी हो हम सब आपके साथ में हैं, मैं और मेरी सेना आपका साथ अवश्य देंगे और येन केन प्रकारेण सीता देवी को ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा व्रत है। और श्री राम ने कहा कि आपकी जो दुश्मनी आपके भाई वाली के साथ है और वाली ने आपका राज्य छीन लिया है और आपकी पत्नी को भी छीन लिया है, तो मैं भी वचन देता हूं कि आपके पत्नी और राज्य को मैं आपको लौटा दूंगा। तो फिर अग्नि जलाई गई और दोनों ने प्रदक्षिणा करके एक समझौता बना लिया एक दूसरे की मदद करने की। रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि आप दोनों भाइयों की दुश्मनी का इतिहास क्या है? तो कहने लगे कि ये जो वाली हैं बहुत शक्तिशाली हैं और राज किया करते थे किष्किंधा का, और मैं उनकी सेवा करता था, उनका छोटा भाई हूँ। एक बार हुआ ये कि मैं दानव का पुत्र मायावी यहाँ पे आया और ललकारने लगा किष्किंधा के बाहर आकर। वाली को बड़े क्रोधित होकर वाली सामने आया। मैंने और वाले की पत्नी तारा ने बहुत प्रयास किया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो तो बहुत क्रोधित हो गए थे, वो आगे निकल पड़े। और मायावी ने जब ऐसा उग्र रूप वाली का देखा, डर के मारे वो भाग गया, एक गुफे के अंदर चला गया। वाली उसके पीछे पीछे गया और दोनों के बीच में युद्ध होता गया अंदर। मुझे कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती थीं, कभी नहीं। वाली ने कहा था मुझे कि गुफे के बाहर द्वार पर खड़े होकर यहाँ पहरेदारी देना, तो मैं वहीं खड़ा था। पूरा एक साल में गुफे के बाहर खड़ा रहा। असुरों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं, परंतु वाली की आवाज़ नहीं आई। और खून की नदियाँ बह रही थीं अंदर से। और फिर मुझे लगा कि शायद माया दानव के पुत्र मायावी ने मेरे भाई वाले का वध ही कर दिया होगा, नहीं तो वाले की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है, केवल दानवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पूरे एक साल के बाद उन्होंने बड़े पत्थर को लेकर उस गुफे के द्वार पे को बंद कर दिया और वापस चले आए। और क्योंकि वो वाले के छोटे भाई थे, अब वो राज सिंहासन पर बैठ गए और राज्य करने लगे। अब हुआ ये कि वाले पराजित नहीं हो गए थे, बल्कि वो जीते थे। काफी समय बाद वो बाहर आए और सीधे राज दरबार में आए। राज दरबार में आके जब देखा कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठे हैं, तो सुग्रीव कहने लगे, उनको बहुत गुस्सा आया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और सुग्रीव ने अपनी बात समझाई कि ऐसे समय एक साल तक प्रतीक्षा करता रहा आपकी। तुरंत अपने राज सिंहासन से उतर के अपने सर से मुकुट लेकर वाली के चरणों में रख दिया कि आप आइए, बैठ जाइए, यहाँ पर आपका ही आसन है। तो वाली ने कहा, वास्तव में मुझे बहुत अंदर जाना पड़ा, पृथ्वी के अंदर उस गुफे में, क्योंकि ये मायावी जो है काफी अंदर भाग गया था और उसे पकड़ के उसकी सेना के साथ युद्ध करते करते मुझे बहुत समय लग गया। लेकिन तुम बड़े दुष्ट हो सुग्रीव, जानबूझकर तुमने वो पत्थर, बड़ा पत्थर लेकर गुफे का मुंह बंद कर दिया। तुम चाहते थे कि मैं वहां हमेशा बंद रह जाऊं और तुम राजगद्दी पर बैठ सको, तुम लोभी हो गए थे, इसलिए तुम्हारी ये चाल है। तो बहुत समझाने का प्रयास किया सुग्रीव ने, लेकिन वाली ने एक नहीं मानी। तो वाली जबरदस्ती बैठ गए राज सिंहासन पर। और इतना ही नहीं, जो सुग्रीव की पत्नी थी रुमा, उसका भी अपहरण कर लिया वाली ने और अपने साथ रुमा को रख दिया और सुग्रीव को बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया राज्य से। अब सुग्रीव निकल तो गए, परंतु डर डर के बाहर रहते थे, क्योंकि वाली कभी भी आके मुझे जान से मार सकता है। मतंग ऋषि के श्राप के बारे में जानते थे, इसलिए उसी स्थान में घूमते फिरते थे, उसके बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उससे बाहर जाने से वाली का खतरा था। जब हनुमान जी श्री राम को सामने लेकर आए थे और समझौते की बात या दोस्ती की बात आई थी, तो सुग्रीव के मन में संशय था कि राम क्या वास्तव में समर्थ हैं, क्या वो इतने बलवान हैं कि वो वाली जैसे शक्तिशाली असुर का सामना कर सके। फिर अपने संशय को व्यक्त किया वाली ने और कहने लगे हनुमान ने पूछा, अरे सुग्रीव, तुम श्री राम को नहीं जानते, उनकी शक्ति अपार है, संशय नहीं करो। जब फिर भी सुग्रीव के हृदय से संशय नहीं जा रहा था तो हनुमान जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि श्री राम को क्या करना होगा तुम्हें साबित करने के लिए कि वो समर्थ हैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हारे राज्य और तुम्हारी पत्नी को लौटा देने के लिए तुम्हें। फिर वो कहने लगे कि देखो, एक बार एक राक्षस था, असुर था, जिसका नाम था दुंदुभि। तो वाली ने दुंदुभि को आसानी से मार दिया और मारकर अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से उछला दिया उसको और वह कई योजन दूर जाके गिर पड़ा। अंगूठे से इतने बड़े विशाल शरीर को उठा दिया और अनेक योजन दूर भेज दिया। अब हुआ ये, क्योंकि वो मारा गया था तो शरीर में खून निकल रहा था और जैसे ही उसका शरीर फेंका जा रहा था दूर, तो खून के बूंद इधर उधर गिर रहे थे, तो मतंग ऋषि के आश्रम में आकर गिर पड़े। तो मतंग ऋषि ने देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरे आश्रम में खून की वर्षा, कौन ऐसे कर रहा है, तो जो भी ऐसे कर रहा हो मैं उसे श्राप देता हूं कि वो यहां आए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाली को पता चला तो वाली क्षमा याचना करके आए, नहीं नहीं गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया, परंतु मतंग ऋषि ने अपना मत बदला नहीं, तो वाली को उस स्थान से दूर ही रहना पड़ा। तो खैर, सुग्रीव ने बताया कि देखो, यहां उसी दुंदुभि राक्षस या असुर की हड्डियां पड़ी हैं। अब मांस वगैरह तो शरीर में रहा नहीं, केवल हड्डियां पड़ी हैं। यदि श्री राम इन हड्डियों के शरीर को उठा के फेंक सकते हैं तो वो मानूंगा कि वो वाली का सामना कर सकेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि जब वाली ने उठाया था और फेंका था दुंदुभि को, तो वो शरीर बहुत भारी था, क्योंकि उसमें मांस आदि बहुत भरा हुआ था, जीवित व्यक्ति था वो। लेकिन अब केवल हड्डियां हैं, फिर भी यदि हड्डियां मात्र केवल श्री राम करें तो मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, मैंने देखा कि वाली ने एक तीर से उस एक वृक्ष को उन्होंने बिल्कुल काट दिया, सात वृक्षों को ऐसे एक काट दिया सात तीरों से। तो यदि श्री राम ऐसे कर पाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो समर्थ हैं। वैसे वाली ने तो अब उठा के फेंक दिया था दुंदुभि के शरीर को, श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमलों के अंगूठे से उठाकर उस उन हड्डियों को बहुत दूर भेज दिया। फिर भी सुग्रीव कहने लगे, चलो ये तो केवल हड्डियां हैं। फिर श्री रामचंद्र ने अपने कोदंड को उठाया, धनुष को, और एक तीर लगाया, ताल वृक्ष वहां थे, तो तीर पहले वृक्ष में से अंदर जाकर बाहर निकली, दूसरे के से अंदर जाकर बाहर निकली, ऐसे सातों वृक्षों के अंदर जाकर बाहर निकल के पृथ्वी लोक में चली गई, रसातल में जाकर, पाताल में जाकर फिर से एक घंटे के बाद आके श्री राम के पास लौट के आई। तब सुग्रीव समझ गए कि हाँ, श्री राम वास्तव में समर्थ हैं, श्री राम शक्तिमान शक्तिशाली हैं और वाली का सामना करने में सक्षम हैं। फिर आगे जाके उन्होंने समझौता किया तो श्री राम ने कहा कि ठीक है, अब मैं समझ गया, तो ऐसे करो, अब बुलाओ जाकर वाली को और तुम दोनों सामने यहां युद्ध करो। मैं झाड़ियों के पीछे खड़ा रहूंगा और पीछे से मैं तीर छोड़ूंगा और वाली की हत्या मैं कर दूंगा। तो सुग्रीव को क्या का हौसला बढ़ गया और जोर जोर से ललकारने लगा किष्किंधा के बाहर आके। बड़ा आश्चर्य लगा वाली को कि अरे, मेरा भाई सुग्रीव उसके उसे इतनी साहस कहां से मिले। तो बाहर चले आए, दोनों के बीच में युद्ध होता गया और वाली तो बहुत शक्तिशाली था सुग्रीव से, इतने जोर जोर से प्रहार कर रहा था वाली सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव कमजोर होते जा रहा था और श्री राम तीर छोड़ नहीं रहे थे। सुग्रीव सोचने लगे, भाई क्या बात है, क्या हो रहा है, श्री राम तीर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मैं तो हार ही जाऊंगा, अभी मर ही जाऊंगा यहाँ पर। और समस्या ये थी कि श्री राम को पता नहीं चल रहा था कि सुग्रीव कौन है और वाली कौन है, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। फिर सुग्रीव को वहां से भाग जाना पड़ा और वाली ने कहा कि चलो इस बार भी तुम्हें छोड़ दिया, चलो। तो सुग्रीव वापस आए, कहा प्रभु क्या कर दिया आपने, आपने कहा जाके युद्ध करो और फिर आपने तीर छोड़ा ही नहीं। देखो समस्या ये है कि मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो खड़ा था तीर लेके पीछे, परंतु पहचान ही नहीं पाया। अब ऐसे कोई निशानी होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर जिससे कि मैं समझ पाऊं कि तुम कौन हो और वाली कौन है, दोबारा जाओ। तो थोड़े समय बाद वो दोबारा गए और उस समय तारा जो वाली की पत्नी थी, उन्होंने कहा वाली से, मुझे कुछ संशय लग रहा है। अब इतने जोर से इतने साहस से दोबारा जब सुग्रीव आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई विशेष शक्ति होगी, तो इतना हौसला कैसे होता सुग्रीव के अंदर। हमने सुना है कि वो राम और लक्ष्मण उनके साथ में हैं और राम शायद उनकी सहायता कर रहे हैं और राम तुम्हारी हत्या करेंगे। तो वाली ने कहा, मेरी राम के साथ क्या दुश्मनी है, राम तो मनुष्य है, वो दूर रहता है, अयोध्या का निवासी है, और मुझसे क्या लेना देना है, मैंने तो राम का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो राम मेरा कुछ क्यों बिगाड़ेंगे, तो राम इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो खैर वो गए और फिर से युद्ध हुआ दोनों के बीच में, सुग्रीव और वाली के बीच में। इस बार श्री राम पीछे खड़े थे और इस बार सही निशानी लगी, क्योंकि अब पता चला उनको कि वाली कौन है, और तीर छोड़ दी। वाली को जैसे ही पीछे से तीर लगी तो वो गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पे बड़ा आश्चर्य था। घूम के देखा तो श्री राम वहां खड़े हैं, और फिर श्री राम को देखकर वाली बड़े दुखी और क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे आज तक रघुवंशी राजाओं ने ऐसे कोई कायरता का कार्य नहीं किया है, आप यदि मेरे सामने आके मेरे साथ युद्ध किए होते तो आज हमारे स्थान बदल गए होते, आप यहां हुए होते, मैं आपकी जगह में हुआ होता, क्योंकि जीत आपकी हो ही नहीं सकती थी मेरे साथ, परंतु आपने ऐसे क्यों किया, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने हमारी तो कोई दुश्मनी परस्पर नहीं है, और वैसे आपने धर्म के युद्ध के जो धर्म के जो युद्ध के धर्म होते हैं उसका उल्लंघन किया है। नियम ये होता है कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति उसमें नहीं प्रवेश करता है, आमने सामने व्यक्तियों को युद्ध करना चाहिए, आपने पीछे से आके युद्ध कर दिया, जब मुझे पता भी नहीं था कि पीछे से आप धनुष बाण लेके खड़े हुए हो, तो इसलिए आपका हम तिरस्कार करते हैं। ऐसे भला बुरा वाली श्री राम को कहने लगे। वाली मरे नहीं, और नहीं मरने का कारण राम के तीर को लगने के बावजूद ये था कि इंद्रदेव ने वाली को एक सोने का हार दिया था, सोने का आभूषण दिया था, जो कि वाली ने गले में पहना था, और इंद्रदेव का आशीर्वाद ये था कि जब तक ये सोने का हार पहन के रहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो सोने का हार था, इसलिए राम के तीर को लगने के बाद भी मृत्यु हुई नहीं, परंतु दर्द बहुत हो रहा था, उठ नहीं पा रहे थे, तो श्री राम ने उस समय उत्तर देना प्रयत्न की, उत्तर देना आरंभ किया। श्री राम ने कहा कि देखो वाली, तुम तो पंडितों जैसे बात कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह नहीं पता है कि धर्म क्या चीज है और सत्य क्या है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का अधिकार संपूर्ण पृथ्वी लोक पर है। ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की संपत्ति है। विश्व सम्राट इक्ष्वाकु राजा के वंशज हैं, इसलिए और जितने भी छोटे बड़े राजा हैं वो सब इनके अधीन हैं। इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले जो राजा हैं वो अपने मर्जी के अनुसार किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, किसी को दंड दे सकते हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सारे पृथ्वी का राज्य संभाल रहे हैं और मैं इक्ष्वाकु राजा का वंशज हूं। कौशल राज दशरथ महाराज का पुत्र हूं और आपको मैं दंड दे रहा हूं। आप मेरे धार्मिकता में दोष देख रहे हो परंतु अपने अधर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपने आपके छोटे भाई सुग्रीव के पत्नी का अपहरण कर लिया और अपने पत्नी के तरह अपने साथ रख रहे हो उनको, तो क्या यह उचित है? क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है और आपने, समझ लीजिए कि आपने पुत्री को आपके पत्नी बनाकर आपके साथ में रखा है, ये कहाँ का धर्म है? ये तो बड़ा अधर्म है, पाप है और एक बहुत ही दंडनीय कार्य है। और हम यहाँ राजा हैं, इक्ष्वाकु वंशज हैं हम, इसलिए जो अधर्म के कार्य करते हैं उनको दंड देना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम दंड दे रहे हैं, तो इसमें दोष क्या है हमारा? हाँ देखिए, श्री राम केवल राजा नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। जो राम ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा कि राजा जो होता है, वैसे धर्मपरायण राजा जो होते हैं, राज ऋषि, वो नारदेव होने के कारण भगवान के शिस्त को या भगवान के नियम को पृथ्वी लोक पर संभालते हैं और ये देखते हैं कि कोई भगवान के नियमों के विरुद्ध कार्य न करे। तो कोई ऐसे भंग करता है नियमों का तो राजाओं को कर्तव्य होता है कि वो उनको दंड दें। यदि राजा ऐसे दंड नहीं देता है तो राजा दोषी खड़ा रहता है भगवान के सामने, राजा को दंड मिलता है। तो जब राजा भी ऐसे कर सकता है और राजा को करना चाहिए, तो क्या भगवान को ऐसे अधिकार नहीं है? तो श्री राम न केवल राजा थे परंतु भगवान भी हैं स्वयं। और हम जब कर्म करते हैं इस दुनिया में तो कर्मों के फल भी हमें मिलते हैं। कर्मों के फल कौन प्रदान करते हैं? भगवान ही देते हैं। कई ऐसे लोग हैं भारत में, एक पंथ के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण नरक में हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कई कपटी कार्य किए, अधर्म के कार्य किए, कभी झूठ कहा, कभी गोपियों के साथ में रासलीला की, अन्यों के पत्नियों के साथ में नृत्य किया, तो ऐसे कई चीजें कहते हैं ये लोग। तो उनका कथन ये है कि कर्म ही प्रधान है, तो कर्म के सिद्धांतों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी नरक जाना चाहिए। अब बेचारे ये लोग नहीं जानते कि ये सब सिद्धांत हैं, नियम हैं कर्म आदि के, ये भी तो किसी ने बनाए हैं ना। जब नियम होते हैं तो नियम अपने आप तो बस नहीं आते। हम सड़क में जाते हैं तो लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है। लाल मतलब गाड़ी रोकना है, हरी बत्ती मतलब आगे जाना है। तो किसी ने तो निर्धारित किया था ना कि लाल मतलब रोको, हरी बत्ती मतलब आगे बढ़ो, और बत्ती किसी ने बिठाई थी ना वहां पर। और यदि लाल बत्ती होते हुए हम आगे चलें तो दंड देने वाला भी कोई होता है ना। तो नियमों के पीछे नियम बनाने वाला व्यक्ति होता है और नियम नहीं पालन करने वालों को दंड देने वाला व्यक्ति भी होता है। तो कर्म सिद्धांत में यदि ये लोग विश्वास करते हैं तो ये भी प्रश्न उठता है कि कर्म सिद्धांत को बनाया किसने और दंड कौन देने वाला व्यक्ति है और कौन निर्धारित करेगा कि इस कर्म के लिए ये दंड होगा, ऐसे पाप कर्म के लिए वो दंड मिलेगा, कौन निर्धारित करता है? वो भगवान कृष्ण है। तो वैसे भी अनादि काल से बद्धजीव जो विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए आया है वो अपने कर्मों के फलों को भुगतते आया है, कभी सुख कभी दुख। तो जैसे करनी वैसे भरनी। तो भौतिक प्रकृति के नियम भगवान ने बनाए हैं और उनके दूत हैं, उनके देवतागण आदि हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्मों के फल बद्ध जीवों को प्रदान करते हैं। तो अब वाली ने ऐसे बड़ा पाप किया था, अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके अपने पत्नी की तरह रख लिया अपने पास, ये भी एक आतताई है। मनु के नियमों के अनुसार ऐसे आतताई को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, भगवद गीता के तात्पर्यों में भी प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। तो रामचंद्र भगवान न केवल एक राजा या इक्ष्वाकु वंशज हैं, इक्ष्वाकु राजा के वंशज हैं, स्वयं भगवान भी हैं। तो दोनों तरफ से वाली के पापों का दंड देने का अधिकार उनको पूरा पूरा है। इसीलिए भगवान श्री राम के कार्य में कोई दोष नहीं है। तो यदि वाली ऐसे कहते कि जो आप धर्म अधर्म की बात करते हो कि हमें छोटे भाई के पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहिए हमारे पत्नी के रूप में, ये तो मनुष्यों के लिए है नियम, मैं तो वानर हूं, तो मनुष्यों का नियम वानरों के ऊपर क्यों लगा रहे हो, यह प्रश्न उठ सकता है। तो श्री राम का उत्तर इसके लिए भी है, ठीक है, यदि आप मानते हो कि आप वानर हो मनुष्य नहीं हो और मनुष्यों का नियम आप पे लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर यह भी नियम है कि क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार है और शिकार करते समय पशु की हत्या भी की जा सकती है, और जब शिकार करते हुए पशु की हत्या होती है तो शिकारी छुप के ही तीर छोड़ता है। इसलिए मैंने जो कार्य किया है वाली वो धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है। अब देखिए वास्तव में वाली ये असुर नहीं था, परंतु क्या होता है इस दुनिया में जब ऐश्वर्य शक्ति पद आदि मिल जाता है तो व्यक्ति का सर घूम जाता है, घमंड आ जाता है और व्यक्ति असुर की तरह ही बर्ताव करने लगता है। ऐसे देखा जाता है देवलोक में भी, इंद्र देव ने जब मूसलधार वर्षा बहा दी ब्रजवासियों के ऊपर और कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत धारण करना पड़ा, ये तो एक असुर वृत्ति का कार्य था, देवताओं को ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था। परंतु जब ऐश्वर्य आदि आ जाता है तो घमंड आ जाता है, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति के होश ठिकाने नहीं रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तरह तरह के गलत कार्य कर बैठते हैं। तो वाली के साथ भी ऐसे हुआ, परंतु वाली असुर नहीं थे। इसका प्रमाण ये है कि जब श्री राम की वाणी सुनी, मधुर वाणी, मृदुभाषी मधुराभाषी, तो उस समय और श्री राम का दर्शन भी किया तो वाली का हृदय परिवर्तित हो गया और वाली कहने लगा कि हाँ श्री राम, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया और मुझे दंड तो मिलना ही चाहिए था, और आपने दंड मुझे दिया है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया है। श्री राम की स्तुति करने लगे वाली, लेकिन अभी तक मृत्यु नहीं आई क्योंकि इंद्रदेव का वरदान था। तब तक वाली के पुत्र अंगद, वाली की पत्नी तारा, सब लोग आ गए थे वहां पर। सुग्रीव को अब बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, राज्य के लिए, राज्य पद के लिए मैंने मेरे भाई की हत्या करवा दी। भाई के भाव को देखा कि वाली तो अब श्री राम के शरण में आ गया है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। तो श्री राम ने कहा नहीं, ऐसे विचार नहीं करना। फिर वाली ने अपने गले से वो सोने का हार निकाला और सुग्रीव के गले में डाल दिया, अंगद के गले में नहीं डाला, अंगद उनका पुत्र था, उनके गले में न डालकर सुग्रीव के गले में डाला और कहा कि सुग्रीव, मेरे पत्नी तारा और मेरे लड़के अंगद का देखभाल करना, तुम्हारे हवाले इनको मैं करके जा रहा हूं, और इनकी अच्छी तरह से ख्याल रखना, जिन लोगों का द्वेष मेरे प्रति था ये देखना कि वो द्वेष, वो गुस्सा वो इन पर उतारे नहीं, इनकी रक्षा हर परिस्थिति में करना और बड़े खुशी से राज्य करना। यहां मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया है। तो दोनों भाइयों के बीच में पुनः प्रेम की भावना जागृत हो गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वाली वास्तव में बुरी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐश्वर्य के कारण कभी कभी हो जाता है। और देखिए अंत में जब उन्होंने वो सोने का हार निकाला, तब फिर नील नाम के वानर ने आके तीर निकाल दी शरीर से, तब अपने अंतिम सांस लिए वाली ने। अब हम तो जानते ही हैं कि भगवान जब किसी की हत्या करते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति का, उसका उद्धार हो जाता है। तो वाली का भला हुआ या बुरा हुआ? भला हुआ, भगवान के हाथ मारे गया तो अहो सौभाग्य है वाली का। तो दंड नहीं बल्कि ये कृपा समझना चाहिए। जब भगवान किसी को दंड देते हैं तो वो दंड दंड नहीं, वो कृपा होती है, भगवान के प्रेम का सबूत होता है वो। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि भगवान ने वाली के ऊपर बड़ी कृपा कर ली। अब ऐसे भी आचार्यों ने टीकाएं किए हैं, वैसे हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने अधिक टीका इस लीला के ऊपर नहीं की है, परंतु अन्य वैष्णव आचार्यों ने ऐसे कहा है कि एक वरदान देवताओं से मिला था वाली को, और ये वरदान ऐसे था, वाली ने मांगा था कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आमने सामने देखकर मेरे साथ युद्ध करे वो कभी जीत नहीं पाए, और जो भी मेरे सामने प्रतिद्वंद्वी हो, योद्धा हो, उसकी आधी शक्ति कम हो जाए और वो आधी शक्ति मुझे मिल जाए। मतलब सामने वाले की शक्ति आधी हो गई और इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, इसलिए वाली को हराने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। ऐसा वरदान मांगा उन्होंने, क्योंकि जब अमृतत्व का वरदान मांगा था उस समय इंद्र ने कहा था भाई मैं भी अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमृतत्व कैसे दिला सकता हूं। तो उस समय वाली ने ऐसे वरदान मांग लिया था। तब श्री राम चाहते तो आमने सामने युद्ध करके भी कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने, पीछे से छुप के क्यों तीर छोड़ा? इसका सवाल, इसका उत्तर ये है कि देवतागण भी भगवान के भक्त हैं, और भक्त होने के कारण भगवान उनके शब्दों का मान रखना चाहते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को बनाए रखा, हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं मांगा था, मेरी मृत्यु दिन में नहीं होनी चाहिए, रात में नहीं, आसमान में नहीं, जल में नहीं, जमीन पर नहीं, इत्यादि बहुत सारी चीजें मांगी थी। और भगवान तो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्होंने ऐसे रूप लिया और इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया कि ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को बिल्कुल हिलाया नहीं, बिल्कुल भंग नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी का मान रखना चाहते थे, आखिर वो तो उनके भक्त हैं ना, उनके प्रतिनिधि हैं। और बाद में भगवान ने, नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई ऐसे वरदान देने के पहले आगे सोच लिया करना, ऐसे आसानी से वरदान नहीं देना ऐसे। तो उसी तरह से यहां पर भी देखा जा सकता है कि देवताओं का वरदान था, इसलिए भगवान श्री राम ने ठीक समझा कि मैं आमने सामने आकर न लड़ूं। वैसे तो वो भगवान है, उनका सामना कौन कर सकता है, परंतु वो नरलीला कर रहे हैं, देवताओं का भी सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने छुप के पीछे से युद्ध किया और वाली की हत्या की और इस तरह से वाली का उद्धार हो गया। तो इस तरह से वाली के वध करने में या वाली की हत्या करने में श्री राम का कोई दोष नहीं था। भगवान जो भी करते हैं वो सही होता है, नैतिक होता है। ये नैतिक और अनैतिक का द्वंद्व ये केवल हम सब हमारे ऊपर है, हम बद्ध जीवों के लिए है, संसार के लिए है, भगवान की के लिए कभी लागू नहीं होता है। तो खैर, ये अंतिम गुण था जिसकी चर्चा हम करना चाह रहे थे कि भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको दंड देना चाहिए, किसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो वाली के उदाहरण से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि श्री राम कैसे अपनी लीलाओं को करते थे। तो खैर, तीन दिन आप सब आए यहाँ पर कथा सुनने के लिए, बड़े ध्यान से श्री राम की कथाएं आप सुनते रहे। आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़े श्रद्धा से, बड़े ध्यान से आप यहाँ बैठे रहे, इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत धन्यवाद आप सबका। अब परसों रामनवमी है, कल भी मंदिर में बड़ा उत्सव होगा, शोभा यात्रा निकलेगी, तो इन सारे कार्यक्रमों में लाभ शामिल होकर लाभ अवश्य आप सब पाइएगा। अभी देर हो चुका है इसलिए और प्रश्न नहीं लेंगे, 7:10 हो गए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।